SBS रेडियो पर आपके साथ हूँ मैं अनीता बरार। जानते हैं हाल ही में मेलबर्न में एक हिंदी नाटक का बहुत ही सफल मंचन हुआ। इस प्रस्तुति को बिना झिझक उत्कृष्ट कहा जा सकता है। वो नाटक क्या था, आइए जानते हैं इस नाटक के एक कलाकार गोपाल गंगवानी और उसके निर्देशक हेम तिवारी जी के साथ इस बातचीत में। गोपाल जी और हेम जी, SBS के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
नमस्कार अनीता जी, धन्यवाद आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया।
नमस्कार अनीता जी, और बहुत अच्छा लग रहा मुझे टू स्टार्ट विद।
आपको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं बात करने जा रही हूँ आपके नाटक के बारे में, जिसको हेम जी आपने डायरेक्ट किया और उसमें आपने एक रोल भी निभाया। इसके साथ साथ गोपाल जी, आपने भी इस नाटक में एक रोल निभाया। नाटक का नाम है अंधा युग। एक बहुचर्चित लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती
जी,
उनकी ये रचना है जिसको आपने रंगमंच पर प्रस्तुत किया है। हेम जी, आप इसका निर्देशन कर रहे थे, तो मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ कि यही नाटक क्यों?
ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। मैं असल में ये सवाल मैंने अपने आप से भी पूछा कई बार, और स्पेशली जब मैंने सोचा कि मैं ये करूँगा उसके बाद भी पूछा। और इसका जवाब ये है कि शुरू में जब मेरी अपनी समझ बढ़ी नाटकों को लेके या फिल्मों को लेके, मैं हमेशा लोगों से सुनता था, एक्टर्स के इंटरव्यू सुनता था कि मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ा एक्टिंग वाइज, क्योंकि बहुत ही अच्छी राइटिंग थी, लेकिन मैं उसका मतलब नहीं समझ पाता था बहुत ज़्यादा। लेकिन धीरे धीरे जब समझ बढ़ी, और शायद उसी टाइम में कहीं मैंने अंधा युग पढ़ा, और फिर मुझे लगा कि अच्छी राइटिंग का मतलब यही होता है
कि उसको अच्छी तरह से लोगों के सामने लाया जा सके, और नाटक या थिएटर इतना अच्छा मंच उसके लिए क्या हो सकता है। अब आपने चूंकि बात की कि जब आपका नाटकों और फिल्मों की तरफ शौक हुआ तो प्रशिक्षण भी लिया।
जी, इसकी शुरुआत हुई दिल्ली से। दिल्ली में मैं मेरे ख्याल से 2-3 साल तक करीब अस्मिता थिएटर से जुड़ा हुआ था
जी।
तो वहीं से जो मेरी अपनी समझ नाटकों को लेकर बढ़ी वो वहीं से हुई। और फिर धीरे धीरे जब यहाँ मेलबर्न शिफ्ट हुआ तो मुझे एक्टिंग को लेके बहुत एक अपना एक पैशन, जिसको कहते हैं कि मुझे सीखना है, करना है, उसकी समझ बढ़ानी है अभिनय, तो यहाँ भी खोज फिर शुरू हुई। और यहाँ जो जब वो कंटिन्यू हुआ उसी दौर में मैं खिलैया प्रोडक्शन से मिला
जी।
और उनके साथ मैंने एक प्ले भी किया, और फिर उसके बाद अभी ये जो 5 साल उनके पूरे हुए तो पहली बार निर्देशन करने जा रहा हूँ, तो मैं अंधा युग ही करना चाहता हूँ
जी। अब चूंकि अंधा युग एक आइकॉनिक लेखन है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का, बता दूं कि ये महाभारत के पात्रों पर आधारित है। तो महाभारत की कहानी से हम सभी परिचित हैं, उनके चरित्रों के अंदर जाना, तो गोपाल जी आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने चरित्र निभाया धृतराष्ट्र का
जी।
तो धृतराष्ट्र के चरित्र में जाकर उसकी प्रस्तुति करना, उस लेखन की, उस चरित्र को जीना रंगमंच पर कितना चुनौतीपूर्ण रहा, और आपने तैयारी क्या की उसके लिए?
इसमें मैं काफी सारा योगदान दूंगा, हेम को ही दूंगा काफी सारा,
निर्देशक को,
क्योंकि इन्होंने स्क्रिप्ट भी हमें दे दी और मैंने कई बार पढ़ी भी वो स्क्रिप्ट
जी।
पर कई बार जैसे इन्होंने कहा कि एक बार पढ़ने से वो आपको वो विजन नहीं मिलता है, और इन्होंने कई बार पढ़ रखी थी, इन्हें पता था हर कैरेक्टर को कैसे बिहेव करना है, क्या करना है उसमें, तो इन्होंने काफी गाइडलाइंस दी। और
छोटी छोटी चीजों पर हमने काम किया था, जैसे हम शुरू में मैंने जब हम लोग इस पढ़ रहे थे, इसको बार बार रीडिंग कर रहे थे, उस दौरान मैंने इनसे कहा कि एक काम कीजिए, आप लोग अपने अपने जो भी ये किरदारों के नाम हैं उनको आप काट दीजिए, उनको समझिए नहीं कि ये धृतराष्ट्र हैं, गांधारी हैं, कुछ भी नहीं, ये महाभारत की कहानी नहीं है, आप बस जो उसमें टेक्स्ट लिखा है उसको पढ़िए, और एक एज ए ह्यूमन अगर मैं एक इंसान के तरीके से उसको पढ़ूँ और समझने की कोशिश करूँ कि कैसा रहा होगा एक ये पिता है और अपने बेटों की उनके बारे में बात कर रहा है कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करता है, तो उसकी ज़िंदगी इस तरीके से आप उस सोचने की कोशिश करिए, तो जो एक्सटर्नल जो एक किरदार का जो एक्सटर्नल हम जो चीज़ें होती हैं उसको हम अभी साइड में रख देते हैं और हम कोशिश करेंगे उसके मन तक पहुंचने की, कैसी सोच रही होगी, आज के इंसान, आज के दौर में ऐसा कोई इंसान हो सकता है, अगर वो सोचेगा तो कैसे सोचेगा, क्या करेगा, ऐसा सोचने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात है कि वो कैसे उठेगा कैसे बैठेगा वो सब अपने आप हो जाएगा, उसको आप भूल जाइए, आप लोग कुछ मत कीजिए उसके बारे में,
वो अपने आप चरित्र में आ ही जाता है।
जी, तो क्योंकि आजकल स्पेशली आजकल की जैसे क्या होता है, सिनेमा देख के हम टीवी सीरियल्स देख के हमारी अपनी एक इमेजिनेशन होती है, तो मैं हमेशा से चाहता था कि हम उससे दूर रहें, स्पेशली अगर हम एक थिएटर कर रहे हैं प्ले कर रहे हैं तो हमें अपनी सोच को कहीं ना कहीं उसको साइड में रख के और अपनी खुद की सोच को इस तरीके से बढ़ाना होता है अपनी इमेजिनेशन की दुनिया को कि हम उसको ढूंढ सकें और उसके अंतर मन को खोज सकें, ना कि बाहरी कि उसने क्या पहना होगा कैसे चल रहा होगा, वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत करते हैं बस उन शब्दों के साथ कि एक पिता की ज़िंदगी कैसी रही होगी जब उसको लगा होगा कि उसके बच्चे युद्ध में मारे जा रहे हैं और वो यहाँ बैठा इंतज़ार कर रहा है।
और हाँ, यहाँ पर यह भी बताना बहुत आवश्यक है कि ये उस पूरी कथा का 18वां दिन है।
जी,
एक ही दिन की बात है ये।
हमारे जो बाकी साथी कलाकार भी जो है हमारे प्ले में, जो आपने देखा होगा, विनय जी जो विदुर की भूमिका निभा रहे थे या अंशु जो गांधारी की भूमिका निभा रहे थे, ये लोग काफी सालों से थिएटर करते आ रहे हैं, तो इन लोगों ने भी काफी फीडबैक दिया मुझे। मैं थोड़ा सा चिंतित था कि मैं अपने आप को अंधा कैसे दिखाऊंगा, तो हेम ने पहले कहा कि आप उसके बारे में सोचो ही मत पहले,
क्योंकि
आप अपने ही घर में हो, कम्फर्ट लेवल में हो। जो आदमी 100 साल से एक घर में रह रहा हो उसको अपने घर में ये फील नहीं होगा कि वो अंधा है।
मुझे लगता है कि अगेन गोइंग, अगर हम राइटिंग को देखें जिस तरीके से लिखी गई है, ज़्यादातर चीज़ें सब कुछ वही हैं उन शब्दों में जो धर्मवीर भाटी जी ने इतने अच्छे से लिखा है। तो किसी भी किरदार की बात करें, और जैसा कि कहते हैं अंधायुग के बारे में कि पृष्ठभूमि महाभारत की है, लेकिन आज की जो ज़िंदगी है हमारी, आज के दौर में भी हम उसको बहुत अच्छे से हम रिलेट कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की तुलना उससे कर सकते हैं एक अच्छी समझ के साथ। तो वैसे ही लगभग सभी किरदारों के साथ मैंने कहा कि आप उन शब्दों के साथ रहिए और वो शब्द ही आपको रास्ता दिखाएंगे। और ये मेरा एक बड़ा विश्वास है कि जो एक लय है उस प्ले का, जो रिदम है, वो वही सब कुछ करता है, वही आपके आपके जो भावनात्मक जो आपकी जो जो साइड हैं उसको लेकर आता है वो शब्द और वो लय। सो एज एन एक्टर, एज अ हम लोग जब उस चरित्र को निभा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बिना कुछ सोचे समझे अपना दिमाग ना लगा के हम शब्दों के साथ रहें और वही हमें गाइड करेंगे आगे बढ़ने में और उस किरदार को निभाने में।
भाषा को समझ पाना यहाँ के परिवेश में एक बहुत बड़ी चुनौती है।
जी,
जब आप यहाँ रह रहे होते हैं, हिंदी से आपका संपर्क उस स्तर पर नहीं रह जाता जिस स्तर पर जब आप भारत में हैं या वहाँ पर आप नाटकों की दुनिया से जुड़े हुए हैं, अलग अलग तरह के साहित्यकारों को पढ़ते हैं। यहाँ आने के बाद में हमारी वो दुनिया थोड़ी सीमित हो जाती है। तो उस स्थिति में ये तो कहूँगी कि धर्मवीर भारती जी के नाम से परिचित थे, अंधा युग से परिचित थे, जिनको भी साहित्य में कुछ रुचि है, और उसमें एक चरित्र जो आपने निभाया
जी,
वो एक अलग ही, उसकी अलग ही दुनिया थी, अश्वत्थामा
जी।
हम बात कर रहे हैं मेलबर्न में हुए नाटक अंधा युग के मंचन की, उसके कलाकार गोपाल गंगवानी और निर्देशक हेम तिवारी हमारे साथ में हैं। हेम जी ने इसमें अश्वत्थामा का चरित्र निभाया, तो आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अश्वत्थामा
जी,
ये एक ऐसा चरित्र है जिसके अंतर मन में तो हमने कभी शायद झांका ही नहीं। तो वो जो आपने तो कहा कि वो लिखा हुआ था सब कुछ तो आसान हो गया, लेकिन उसके लिखे होने के बावजूद उसके अंतर मन में जाना आपके लिए कितना मुश्किल था? यहाँ पर आपकी कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा काम आ गई?
ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा शुरू के दौर में, जब मैंने शुरुआत हुई कि शब्दों के साथ रहो, सोचना शुरू करो, बार बार पढ़ो, और उसमें जो एक मेरी अपनी सोच जो मेरे साथ रही नाटक के समय तक, वो ये थे कि आज के दौर में मैं इसको कैसे समझूं, अगर एक मैं एक यंग पर्सन यहाँ रह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, और अश्वत्थामा कैसा रहा होगा और उसकी क्या क्या दुविधाएं रही होंगी और क्या क्या मुश्किलें रही होंगी। तो मुझे लगा, मैंने सोचा कि आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं जो एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिनके फादर भी आर्मी में हैं, फिर बच्चे भी जाते हैं आर्मी में। सो मैंने ये सोचा कि अगर किसी एक ऐसे इंसान का जो एक यंग बच्चा है और उसके फादर ऑलरेडी आर्मी में हैं और वो किसी युद्ध में मारे गए, और ये जो एक लड़का है जिसने अभी तुरंत ही उसी रास्ते को चुना है, तो दुनिया को कैसे देखेगा, उनकी ज़िंदगी क्या कैसे होगी और वो क्या करेगा आगे जाके। मैं जब इंटरव्यूज देखता था ऐसे, जब हम युद्ध के बाद किसी पत्नी को या माँ को या बेटे को, जो कई सारे पुरस्कार और वैसे जगहों पे जहाँ उनको सम्मानित किया जाता है, वो लोग वहाँ जाते हैं, रोते भी नहीं हैं, मैं उनके बारे में सोचता था, और शायद मुझे लगता कि वो मेरे लिए एक बड़ा ही की था, एक वो चाबी थी अश्वत्थामा के बारे में समझ पाने में और सोचने में।
अब चूंकि वो नाटक मैंने देखा है और मैं कह सकती हूँ कि वो चरित्र जीवंत था, और ये भी समझ में आ रहा था कि ये किसी ऐसे ही कलाकार की प्रस्तुति नहीं हो रही है, उसने शब्दों को अच्छी तरह से समझा हुआ है। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और मुबारक भी देना चाहूँगी कि वो जो आपने जीवंत प्रस्तुति की वो अंदर तक छू गई, क्योंकि अश्वत्थामा के बारे में शायद हम कभी उस स्तर पर सोच नहीं पाते। लेकिन इस नाटक में एक और चरित्र है संजय का
जी,
जो बहुत ही दुविधापूर्ण स्थिति से गुजरते हैं, और शायद वो भी एक और चरित्र है जिसके बारे में हम नहीं सोच पाते, और इस नाटक के जरिए से हम उसकी दुविधा को भी जान सके
जी। जो सारे किरदार धर्मवीर भारती जी ने जिस तरीके से उनके बारे में लिखा है, और वो जो लाइनें हैं वो इतनी अच्छी हैं कि याचक है, संजय हैं, विदुर हैं, और उनकी जो एक समझ है वो इतने अच्छे से लिखा हुआ है कि हम लोग तैयारी के दिनों में, मैं हमेशा यही कहता था कि आप बस पढ़िए उसको, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, शब्दों के साथ रहिए,
बहुत सेशन करवाए।
हाँ,
पढ़ने के पहले एक दो महीना तो हम सिर्फ पढ़ते ही रहे।
मैं अभी यही पूछने जा रही थी कि कितना समय लगा और क्या प्रोसेस रहा।
देखिए, मैं तो कहूंगा कि प्रोसेस 6 महीने पहले शुरू कर दिया था, और मुझे आज भी याद है पहला दिन था जब हमारी गांधारी जी, उन्होंने इतने बड़े बड़े डायलॉग, दो दो पेज के डायलॉग बिना वहां पर रुके आपके सामने भी कहे, वो पढ़ ही नहीं पा रही थी। वो कह रही थी कि इतने मुश्किल शब्द हैं, तो पहले शब्दों को उच्चारण थोड़ा समझ आना जो है, उसके लिए हम 2 महीने तक तो लगभग सिर्फ उसे हर हफ्ते में 2 बार उसे सिर्फ पढ़ते ही रहे।
ठीक, क्या बात है।
कहते हैं कि अंधा युग कलाकारों के लिए अभिनय के, जैसे आप इंडिया में हर स्कूल में जो भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या हर जगह पढ़ाया जाता है या एक पाठशाला है, तो वो मुझे ये बात का एहसास जब हम लोग ये सब कुछ करना शुरू किया हमने, तो हुआ कि हाँ, ये सही में एक काव्य है, महाकाव्य है।
बिल्कुल
बिल्कुल। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि डायरेक्टर हिंदी थिएटर में जब तक आप अंधा युग डायरेक्ट नहीं करते हो सक्सेसफुली, तब तक आप बेसिकली डायरेक्टर नहीं कहलाते। तो भाई, इनका तो डेब्यू था मेलबर्न पहली बार उन्होंने कोई थिएटर, कोई प्ले डायरेक्ट किया, और अंधा युग, और वो बहुत पसंद किया गया।
जी बिल्कुल, और ये बताता है कि यहाँ पर जो समुदाय बसा हुआ है उसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है
एकदम।
और मैं क्या तारीफ करूं, क्योंकि शायद मेरे पास में भी शब्द नहीं है।
वेरी काइंड, आप जो कह रही हैं दिल से कह रही हैं।
बिल्कुल।
और इसमें मैं एक्चुअली योगदान धर्मवीर भारती जी का फिर से ऐड करना चाहूंगा कि जो उनके बारे में मैंने भी पढ़ा कि वो शुरुआती दौर से अपने जीवन के, जब उन्होंने किताब लिखी वो 22-23 साल की उम्र रही थी उनकी, उन्होंने नाटक लिखा, तो आप सोचिए 22-23 साल की उम्र में ये चीज समझना और उसको किताब में लिखना, ये एक आम इंसान की बात, कैपेबिलिटी की बात है ही नहीं।
बिल्कुल, वो यूं ही धर्मवीर भारती नहीं है।
हाँ, वो क्वेश्चन करते थे। उनकी जो दूसरी किताबें भी हैं, उसमें वो राधा के हिसाब से कृष्ण की या महाभारत या उस वक्त का जो एरा था उसके बारे में भी उन्होंने किताब लिखी है।
हाँ।
कनुप्रिया। तो ऑलवेज देखना चाहते थे कि ये जो किरदार, इनके ऊपर क्या बीती होगी, वो सोच करके उसका लिखना, मैं कहूंगा कि इट्स अ बिग अचीवमेंट। हम सिर्फ जो पॉपुलर कैरेक्टर होते हैं उन्हीं के बारे में सोचते हैं, पर जो लोग अपोजिट साइड में वो क्यों हैं ऐसे, वो
जो लीक से हट के खड़े हैं उनके साथ क्या जा रहा है, और तभी आता है कि जीवन के हर मोड़ पर हर जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
सही बात। एक और मैं श्रेय देना चाहूँगा मेलबर्न की ऑडियंस का भी
जी,
क्योंकि मुझे लगता है कि एक बड़े स्तर पे मुझे मेरे लिए एक चैलेंज था जो मेरे अब वो मेलबर्न की ऑडियंस ने उसको गलत साबित कर दिया। लोग सोचते थे कि ये किसी को समझ में आएगा यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये ऐसी हिंदी कौन समझेगा यहाँ पर। और जिस तरीके से मुझे वो जो प्रेम मिला है और हम लोगों ने इसको जिस तरीके से किया, और मुझे लगा कि सारे जो ये हम लोग जो जो भी वहाँ पे स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे उस नाटक में हमारे अलावा पूरी ऑडियंस का भी उतना ही योगदान है। वो एक बड़ा ही टू वे कम्युनिकेशन मैंने देखा वहाँ हो रहा था, और हम लोग असल में देखें तो वो सारे लोग जो वहाँ बैठे थे उनकी भावनाओं के साथ हम उनको बस रिएक्ट कर रहे थे। मैं इतनी खुशी मिली मुझे ये देख कर कि हम लोग कितना एक कम आंकते हैं लोगों की समझ को। हमें ऐसा लगता है कि हम एक आज की दुनिया जैसे हम अपने ऊपर एक पर्दा लगा के चलते हैं और सब लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन एक ऐसी भी समझ है कि हम अगर ऐसा कुछ कहना चाहें या करना चाहें तो उसकी समझ ऑडियंस को भी है और वो उतने अच्छे से उसको स्वीकार भी करेगी। वो मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी।
ने बिल्कुल मन की बात मेरी कह दी कि जो नाटक प्रेमी हैं उनकी समझ को कम नहीं आंका जा सकता। वो प्रभावित करता है कलाकारों को और कलाकारों की क्षमता को भी हम कम नहीं आंक सकते। जब आप जैसे लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे किसी के लिए ये नया अनुभव हो या वो पहले से ही मंजे हुए कलाकार हों, एक दूसरे से सीखने का अवसर मिलता है और इस कला को आगे बढ़ाना है और आप लोगों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला मुझे।
शुक्रिया। मैं कहूँगा अनिता जी कि आपके साथ हमें भी मौका मिला हमारे दिल की कुछ बातें आपके तक और आपके सुनने वालों तक पहुँचाने का।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।